आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं प्राची प्रिया। श्रोताओं, वित्त वर्ष 2026-27 की शुरुआत भारत ने मजबूत आर्थिक वृद्धि के साथ की है। अप्रैल से जून की पहली तिमाही में देश की रियल जीडीपी में 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई है। एक साल पहले इसी अवधि में ये वृद्धि 6.9% थी। महत्वपूर्ण बात ये भी है कि ये आंकड़ा भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमान से अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि को लेकर अपना संदेश सोशल मीडिया के माध्यम से साझा किया। उन्होंने पहली तिमाही की इस वृद्धि को भारत की सामूहिक क्षमता और मुश्किल परिस्थितियों में टिके रहने की ताकत का संकेत बताया है। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संदेश।
देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। 7.8% ग्रोथ, देश खुशियों से भर गया है। लेकिन देशवासियों को मैं बधाई देता हूँ उनके संकल्प शक्ति के लिए, उनके पुरुषार्थ के लिए। एक सामूहिक शक्ति का एक प्रतिबिंब है। दुनिया युद्ध में डूबी हुई है, चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही है, विश्व संकटों से घिरा हुआ है, सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब है। 2020 में कोविड काल से लेकर अब तक कहीं पर भी स्थिरता नजर नहीं आ रही है। उसके बावजूद भी भारत तेज गति से प्रगति कर रहा है। इन सारी चीजों को पार करते हुए, उन सभी बातों को चीर करके देश ने 7.8% ग्रोथ हासिल किया है। हमें इस गति को बनाए रखना है।
आज के विश्लेषण में हम समझेंगे कि इन आंकड़ों का व्यापक अर्थ क्या है, इस वृद्धि के पीछे प्रमुख कारक क्या रहे, और वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत के सामने आगे की चुनौतियां क्या क्या हैं। आसान भाषा में कहें तो जीडीपी यानी किसी निश्चित अवधि में देश की सीमा के भीतर तैयार हुई वस्तुओं और सेवाओं की कुल आर्थिक कीमत। और जब हम रियल जीडीपी की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ उत्पादन की वास्तविक वृद्धि को देखा जाता है। इसलिए आर्थिक विकास की रफ्तार समझने के लिए रियल जीडीपी का आंकड़ा ज्यादा उपयोगी होता है। आइए अब समझते हैं कि अर्थव्यवस्था में आई इस रफ्तार के पीछे प्रमुख कारक क्या रहे।
अर्थव्यवस्था में अलग अलग क्षेत्रों के योगदान को समझने के लिए एक और महत्वपूर्ण आंकड़ा है GVA यानी सकल मूल्यवर्धन। आसान शब्दों में कहें तो यह बताता है कि अर्थव्यवस्था में अलग अलग क्षेत्र जैसे खेती, उद्योग और सेवाएं कितना आर्थिक मूल्य जोड़ रहे हैं। पहली तिमाही में वास्तविक GVA में 8.2% की वृद्धि हुई। एक साल पहले यह 7% थी। अब अगर क्षेत्रवार तस्वीर देखें तो सेवाओं ने सबसे मजबूत प्रदर्शन किया है। सेवा क्षेत्र की वास्तविक GVA 10% बढ़ी है, जबकि एक साल पहले यह वृद्धि 8% थी। वित्तीय सेवाओं, रियल स्टेट, सूचना प्रौद्योगिकी और पेशेवर सेवाओं में वृद्धि 12.1% रही। विनिर्माण क्षेत्र में भी कई क्षेत्रों ने बेहतर प्रदर्शन किया। इलेक्ट्रिकल उपकरणों के उत्पादन में 27%, अन्य परिवहन उपकरणों में 19.5%, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल उत्पादों में 12.4% और मशीनरी तथा उपकरणों में 9.1% की वृद्धि हुई है। इसी दौरान पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन 15.2% बढ़ा है। कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों के लिए वृद्धि 3.6% रही, यानी वृद्धि केवल शहरों और सेवा क्षेत्र तक सीमित नहीं रही। घरेलू परिवारों के निजी खर्चे में 7.1% की वृद्धि हुई, जो एक साल पहले 6.8% थी। इसका सीधा अर्थ है कि अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की मांग बनी हुई है। जब मांग बनी रहती है तो कंपनियों के लिए उत्पादन बढ़ाने का आधार तैयार होता है। सबसे उल्लेखनीय बदलाव निवेश में आया। स्थानीय संपत्तियों जैसे मशीनरी, भवन और बुनियादी ढांचे में निवेश को मापने वाले सकल स्थायी पूंजी निर्माण में 11.9% की वृद्धि हुई है। एक साल पहले यह सिर्फ 5.8% थी। यह बदलाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज का निवेश आने वाले समय की उत्पादन क्षमता तैयार करता है।
श्रोताओं, इन आंकड़ों से एक बात स्पष्ट होती है कि भारत की आर्थिक वृद्धि का आधार अब पहले की तुलना में अधिक व्यापक है। सेवाएं अर्थव्यवस्था का बड़ा आधार जरूर है, लेकिन विनिर्माण, घरेलू खपत, निवेश और निर्यात भी वृद्धि को मजबूती दे रहे हैं। पहली तिमाही के इस प्रदर्शन के प्रमुख कारकों को समझने के लिए आकाशवाणी समाचार ने आर्थिक विश्लेषक डॉक्टर एसपी शर्मा से विशेष बातचीत की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
इसका प्रमुख आधार वह आर्थिक लचीलापन है जिसे भारत ने पिछले कई वर्षों से लगातार तैयार किया है। ये रातों रात हासिल हुई उपलब्धि नहीं है। इसके पीछे लोगों, व्यापार और उद्योग के प्रयास, सरकार के सुधार और संकट के समय विभिन्न हितधारकों को सरकार की ओर से दिया गया सहयोग शामिल है। इन सभी प्रयासों से भारतीय अर्थव्यवस्था में एक मजबूत लचीलापन आया है जो अब जमीनी स्तर पर साफ दिखाई दे रहा है और इसके अच्छे परिणाम भी मिल रहे हैं। पिछले वर्ष हमारी वृद्धि दर लगभग 7.8% रही और इस वर्ष की शुरुआत भी 7.8% की वृद्धि दर के साथ हुई है। 7.8% ग्रोथ रेट।
पहली तिमाही में 7.8% की वास्तविक जीडीपी वृद्धि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक मजबूत शुरुआत है, लेकिन पूरी अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन का फैसला सिर्फ पहली तिमाही से नहीं होता। महत्वपूर्ण ये बात है कि क्या ये गतिविधि अगले महीनों में भी बनी रहेगी। आइए अब समझते हैं कि आने वाली तिमाहियों में आर्थिक वृद्धि के क्या संकेत हैं और इस रफ्तार को बनाए रखने के रास्ते में कौन कौन सी चुनौतियां आ सकती हैं।
पहली तिमाही के बाद शुरुआती संकेत इसी रफ्तार को कायम रखने की दिशा में मजबूत दिखते हैं। जुलाई 2026 में औद्योगिक उत्पादन में 6.7% की वृद्धि हुई। अप्रैल से जुलाई के बीच औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि 6.3% रही, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में यह 4% थी। जुलाई में पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन 16.1% बढ़ा। इसका संबंध उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होने वाली मशीनरी और उपकरणों से है। निर्यात भी मजबूत रहे। जुलाई में वस्तुओं और सेवाओं का कुल निर्यात करीब $80.14 अरब रहा, जो एक साल पहले की तुलना में 13.31% से अधिक है। अप्रैल से जुलाई के बीच कुल निर्यात करीब $316.42 अरब रहा, जिसमें 13.16% की वृद्धि हुई। यानी पहली तिमाही के बाद उत्पादन, निर्यात से जुड़े आंकड़े आर्थिक गतिविधियों में मजबूती की ओर इशारा कर रहे हैं, लेकिन इससे एक चुनौती भी है, वैश्विक अनिश्चितता। भारत अपनी तेल जरूरतों का लगभग 90% आयात करता है, इसलिए अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतें लंबे समय तक ऊंची रहती हैं, तो इसका असर भारत के आयात, खर्च, महंगाई और आर्थिक वृद्धि पर पड़ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एक आकलन के अनुसार तेल की कीमत में 10% की वृद्धि भारत की वास्तविक जीडीपी को लगभग 0.2% अंक तक कम कर सकती है और महंगाई को करीब 0.3 से 0.4% अंक तक बढ़ा सकती है। यही कारण है कि पश्चिम एशिया में तनाव, ऊर्जा की कीमतों में उतार चढ़ाव और वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता पर दृष्टि बनाए रखना महत्वपूर्ण है। इस अनिश्चित माहौल के बावजूद घरेलू मांग, निवेश, विनिर्माण और सेवाओं की गतिविधियां बनी रहीं। यही भारत की अर्थव्यवस्था के लचीलेपन का महत्वपूर्ण संकेत है। समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
श्रोताओं, अगर पिछले कुछ वर्षों की तस्वीर देखें, तो नई श्रृंखला के संशोधित आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में रियल जीडीपी ग्रोथ 7.3%, 2024-25 में 7.2% और 2025-26 में 7.8% रही। जुलाई में आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की पूरे साल की आर्थिक वृद्धि का अनुमान 6.4% रखा था। पहली तिमाही का दर्शन बताता है कि नए वित्त वर्ष की शुरुआत उम्मीद से मजबूत रही है। वैश्विक तुलना में भी भारत की स्थिति मजबूत दिखाई देती है। उपलब्ध नवीनतम तिमाही आंकड़ों में चीन की वृद्धि 4.3% और अमेरिका की 2.1% रही है। हालांकि अलग अलग देशों में जीडीपी मापने और आंकड़े जारी करने के तरीके अलग होते हैं, इसलिए इन आंकड़ों की सीधी तुलना सावधानी से करनी चाहिए। फिर भी तस्वीर साफ है, बाहरी दबावों के बावजूद भारत में घरेलू आर्थिक गतिविधियां विकसित भारत की नींव लगातार मजबूत कर रही हैं। इसी के साथ कार्यक्रम विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया अनिकेत ने, प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी।